हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कृषा और युग का केस कोर्ट पहुंच चुका था। सिंघानिया फैमिली की तरफ से उनका केस बानी चतुर्वेदी रिप्रेजेंट कर रही थी। जज साहब कोर्ट रूम में आ चुके थे, लेकिन राणा फैमिली की तरफ से अभी तक कोई लॉयर नहीं आया था। कृषा को अंदर ही अंदर बहुत घबराहट महसूस हो रही थी, क्योंकि ना तो उनका लॉयर आया था और ना ही युग। ऑपोजिट पार्टी का कोई लॉयर ना होने का फायदा उठाते हुए बानी चतुर्वेदी खड़ी हुई। पहले वो जज के सम्मान में थोड़ा झुकी और फिर गर्दन सीधी करके सधे हुए लहजे में बोली, मैं आज यहाँ रोहान खुराना की तरफ से इस केस को डिफेंड कर रही हूँ। केस के बारे में आपको क्या बताऊँ योर ओनर, यहाँ तो मेरे खिलाफ लड़ने के लिए कोई लॉयर ही नहीं है। जज ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर राणा फैमिली की तरफ देखकर पूछा, क्या आपने अपने लिए कोई वकील हायर नहीं किया या फिर उन्हें आने में देर हो रही है? देखिए, ये कोर्ट का अपमान है, उन्हें मेरे आने से पहले यहाँ प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। कोई कुछ कहता उससे पहले कोर्ट रूम के दरवाजे पर एक सख्त आवाज़ आई। वो युग था और अंदर आते हुए बोला, सॉरी योर ओनर, मुझे आने में देर हो गई। कृषा ने मुड़कर देखा तो युग ने फॉर्मल ड्रेस पहनी थी और ऊपर लॉयर का कोट पहन रखा था। उसने एक फाइल जज के सामने खड़े आदमी को पकड़ाते हुए कहा, ये मेरा वकालतनामा है, इस केस को मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। युग को देखकर जज ने मुस्कुराहट दी और फिर सिर हिलाकर कहा, वकालतनामे की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर राणा, मैं आपको जानता हूँ, लेकिन आपको इस छोटे से केस को प्रेजेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ज़रूरत पड़ गई मी लॉर्ड, क्योंकि ये केस मेरे ही खिलाफ़ हुआ है, युग ने उनकी तरफ देखकर कहा, तो जज भी हैरान रह गया। फिर उसने बानी चतुर्वेदी की तरफ देखा, जो हैरानी से इस पूरे सीन को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि युग एक लॉयर निकलेगा, सिंघानिया फैमिली भी इससे अनजान थी। युग को जज के साथ इतना घुलते मिलते देख रोहान ने धीरे से अर्जुन से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जजेस से मिला हुआ है? अगर है भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास सबूत है और ये हमारे सबूतों को नहीं झुठला सकता, अर्जुन ने जवाब दिया। वो दोनों बातें करने में लगे थे तभी सामने से जज साहब की तेज आवाज आई, यू मे प्रोसीड योर केस। बानी चतुर्वेदी आगे आई और केस के बारे में बताते हुए बोली, मैं यहाँ मिस्टर रोहान खुराना की तरफ से केस को प्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि मिस्टर युग राणा के खिलाफ है। मिस्टर राणा ने मेरे क्लाइंट मिस्टर खुराना की पत्नी को ज़बरदस्ती किडनैप किया और फिर उनसे शादी कर ली। मैंने केस फाइल के साथ इनका मैरिज रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट लगाए हैं, आप चेक कर सकते हैं। मिस्टर राणा और कृषा खुराना की शादी लगभग 3 महीने पहले हुई थी, जबकि मेरे क्लाइंट और उनकी वाइफ की शादी आज से 2 साल पहले हो चुकी थी। पूरी बात सुनने के बाद जज साहब ने सारे पेपर्स देखे, पेपर बिल्कुल सही थे। जज साहब ने युग की तरफ देखकर कहा, आप इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं? युग अपनी जगह से खड़ा हुआ और आगे आते हुए बोला, इनकी शादी का एकमात्र सबूत ये पेपर है, जो कि झूठा भी हो सकता है। युग बोल रहा था तभी बानी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, आप इस तरह किसी की शादी को झूठला नहीं सकते मिस्टर राणा, कहने को तो आपकी शादी भी झूठी हो सकती है, आपने अब तक अपनी शादी रजिस्टर क्यों नहीं की, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? बानी चतुर्वेदी की बात सुनकर युग के फेस पर ईविल स्माइल थी। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं अपनी वाइफ को यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाता हूँ, वो बता देती कि किसकी शादी सच्ची है या किसकी झूठी। हो सकता है वो आपसे डर रही होगी, वैसे भी आपने उसे किडनैप करके उससे शादी की थी, बानी ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। युग ने सर्द निगाहों से बानी की तरफ देखकर कहा, सोच समझकर बात कीजिए मिस चतुर्वेदी, मैं आप पर डिफेमेशन का केस भी कर सकता हूँ, आप इस वक्त एक इंटरनेशनल लॉयर के सामने खड़ी हैं। जज साहब ने बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा, माइंड योर लैंग्वेज मिस चतुर्वेदी, आप बिना किसी सबूत के किसी के ऊपर इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। बानी ने अपने किए पर युग को सॉरी बोला और फिर जज साहब से कहा, मुझे कृषा खुराना को विटनेस बॉक्स में बुलाकर उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। बानी बार बार कृषा को कृषा खुराना कहकर बुला रही थी, ये बात युग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो फिर से बीच में इंटरप्ट करते हुए बोला, आई अगेन वॉर्न यू मिस चतुर्वेदी, होल्ड योर लैंग्वेज, मेरी वाइफ को आप कृषा खुराना कहकर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, शी इज कृषा राणा नाउ। बानी ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। कृषा विटनेस बॉक्स में आई और आते ही उसने युग की तरफ देखा। युग ने उसे आंखों ही आंखों में शांत रहने को कहा। कृषा के विटनेस बॉक्स में आते ही उसे सबसे पहले सच बोलने की शपथ दिलवाई गई। उसके ऐसा करते ही बानी उसके पास आई और कृषा से अपना पहला सवाल पूछते हुए बोली, आप यहाँ बिना किसी डर के अपनी बात रख सकती हैं, कुछ भी कहने से पहले ये बात याद रखिएगा कि आपने सच बोलने की कसम खाई है, क्या इस इंसान ने आपको मजबूर किया था शादी करने के लिए? कुछ भी कहने से पहले कृषा ने युग की तरफ देखा और फिर नामे सिल हिला दिया। बानी कृषा की हर एक हरकत को नोटिस कर रही थी, वो बार बार युग की तरफ देख रही थी तो बानी ने सख्त आवाज में कहा, मैंने आपसे कहा कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप फिर बार बार मिस्टर राणा की तरफ क्यों देख रही हैं? क्या ये आपको किसी तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं या आपको डर लग रहा है कि अगर आपने इसके खिलाफ सच बोल दिया तो घर जाकर ये आपके साथ मारपीट करेंगे या ऐसा ही कुछ और? बानी की बात सुनकर कृषा को गुस्सा आ गया, वो इरिटेट होकर बोली, आप बार बार मुझे युग के खिलाफ भला बुरा क्यों बोल रही हो? मेरी पहले किसी से शादी नहीं हुई थी, आप जिस इंसान की पत्नी कहकर मुझे बुला रही हैं, मैंने उसे कोर्टरूम से पहले आज तक देखा तक नहीं। जज साहब, इन्हें ऐसा कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दे रही कि युग्राना ने इनके साथ जबरदस्ती शादी की थी या नहीं। ये आपको सच नहीं बता रही, लेकिन मैं बता देती हूँ। आज से लगभग 3 से 4 महीने पहले कृषा सिंघानिया एक बीच पार्टी पर गई थी, जहाँ से युग और उसके आदमियों ने उसे किडनैप किया। उसे लगभग 10 दिनों तक अपने घर लंदन में रखा और फिर अपने पास मुंबई लेकर आ गया। वहीं पर उसने कृषा सिंघानिया से शादी की थी। शादी के बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसके बाद ये शादी पब्लिक की गई थी। अर्जुन ने बानी को पहले ही सब कुछ बता दिया था और उसी के हिसाब से उसने सारा सच जज साहब के सामने रखा। बानी की बात सुनकर युग ने तालियां बजाई और फिर मुस्कुराते हुए कहा, काफी अच्छी स्क्रिप्ट है मिस चतुर्वेदी, आपको तो राइटर होना चाहिए। आई मस्ट से, अगर ये कहानी पब्लिश हुई तो बहुत हिट होगी। इस कहानी पर कोई मूवी या डेली सोप बनेगा तो भी बहुत हिट होगा। लेकिन इसमें अभी भी एक कमी है, स्टोरी के लीड को माफिया दिखाते हैं। आजकल लोगों को माफिया वाली कहानी कुछ ज्यादा ही पसंद आती है। कुछ देर बाद में आप ये तो नहीं कहने वाली कि मैं भी एक माफिया हूँ? बोलते हुए युग के फेस पर ईविल स्माइल थी। बानी ने उसकी तरफ गुस्से में देखा। अर्जुन ने बानी को युग की पूरी सच्चाई बताई थी और वो यही कहने वाली थी कि युग एक माफिया है। युग ने काफी स्मार्ट प्ले किया और खुद ही सारी बात सबके सामने रख दी। एक पल के लिए कोर्टरूम में सन्नाटा हो गया जब युग ने कहा कि वो एक माफिया है। युग की बातें सुनकर सारा को अजीब महसूस हो रहा था। उसने शब्द की तरफ देखकर धीरे से कहा, ये पागल तो नहीं हो गया है? ऐसे सबके सामने अपनी इतनी बड़ी सच्चाई कौन एक्सेप्ट करता है? ये युग राया है, कुछ भी कर सकता है, तुम बस चुपचाप तमाशा देखती रहो, शब्द ने उसे चुप करवाते हुए कहा।
बानी चतुर्वेदी हैरानी से युग की तरफ देख रही थी। उसने युग की बात पर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तो इसमें गलत क्या है मिस्टर राणा? अच्छा हुआ आपने खुद ही अपना सच सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया कि आप एक माफिया हो। बानी की बात सुनने के बाद जज साहब ने सख्त आवाज में कहा, मैंने आपको पहले ही वार्निंग दी थी मिस्टर चतुर्वेदी कि आप अपने साथी लॉयर पर किसी तरह का झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगी। मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूँ और ये एक बहुत बड़े और नामी वकील हैं। आप इस तरह इन पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? मैं बस सच कोर्ट के सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं सर, बानी ने कंधे उठाकर कहा। युग ने उसकी बात के जवाब में कहा, मुझे तो आप सिर्फ कहानियां गढ़ती हुई नजर आ रही हैं मिस चतुर्वेदी, पूरा सच सुनना है तो मैं आपको बताता हूँ। आई एक्सेप्ट कि मैंने कृषा को किडनैप किया था, पर इसमें उसकी भी सहमति थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इसका भाई जबरदस्ती इसकी शादी अपने दोस्त के साथ करवाना चाहता था। ये वही दोस्त है जिसके साथ उनके शादी के पेपर्स कोर्ट में सबमिट करवाए गए थे। कृषा आज से पहले इससे मिली तक नहीं। इसने मुझे सारा सच बताया तो मैंने इसे बीच पार्टी से अपने पास बुला लिया। हम कुछ दिनों तक अपने लंदन वाले घर में रहे और फिर हमने शादी कर ली। इसके घर वाले शादी से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ केस कर दिया। युग ने अपनी तरफ से बनाई हुई कहानी जज साहब के सामने रखी। फिर उसने कृषा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही है ना मिसेज राणा? कृषा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और फिर कहा, ये सच बोल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से पहले से प्यार करते थे। आप झूठ बोल रही हैं मिस कृषा सिंघानिया, आप तो मिस्टर राणा से पहले मिली तक नहीं थी, फिर प्यार कैसे हो गया? चलिए बताइए आपकी पहली मीटिंग कहाँ और कब हुई थी? बानी जानती थी कि वो युग से आसानी से जीत नहीं पाएगी, तो उसने कृषा को टारगेट किया। वो कृषा को जानबूझकर अपने सवालों के जाल में फंसा रही थी। कृषा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और जवाब में कहा, मुझे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। मेरे दादू और इसके दादू फ्रेंड्स थे, फिर उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई और हमारी फैमिलीज एक दूसरे से दूर हो गई। हम दोनों फिर भी टच में रहते थे। बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता नहीं चला। अब मुझे एग्जैक्ट डेट और टाइम कैसे याद रहेगा कि मुझे कब इससे प्यार हुआ था? इतना काफ़ी है मिस चतुर्वेदी या आपको और डिटेल चाहिए? युग ने बानी की तरफ देखकर पूछा। जज साहब ने भी कृषा और युग का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया था। उन्होंने बानी चतुर्वेदी से कहा, अगर आपके पास कोई और सवाल नहीं है तो मैं पहली हेयरिंग में ही इस केस को खत्म कर रहा हूँ। ये कोई नया मामला नहीं है, पहले भी इस तरह के केस कोर्ट में आ चुके हैं, जहाँ लड़की के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होते तो लड़के पर जबरदस्ती शादी करने का केस कर देते हैं। और इस तरह के मैरिज सर्टिफिकेट तो कहीं पर भी बन सकते हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेट रियल है सर, आप इसकी जाँच करवा सकते हैं, बानी ने सिर हिलाकर कहा। मिस चतुर्वेदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं सर, हमें इस मैरिज सर्टिफिकेट की जांच करनी चाहिए और इसके तह तक पहुंचना चाहिए। मैं खुद चाहता हूं इसकी जांच हो, इस तरह के फॉल्स सर्टिफिकेट आगे से कोर्ट में सबमिट ना किए जाएं। युग ने बानी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जिस पर वहां बैठे सभी लोगों को हैरानी हुई। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे हियरिंग को आगे बढ़ाना था और वही हुआ। जज साहब ने युग की बात पर हामी भरी और फिर मैरिज सर्टिफिकेट को जाँच के लिए भिजवा दिया। उन्हें एक हफ्ते बाद की नेक्स्ट डेट मिली थी। जज साहब के जाने के बाद कृषा जल्दी से युग के पास आई और उसके गले लग गई। उसने धीरे से कहा, तुम इतना लेट क्यों आए? मैं घबरा गई थी। और तुम लॉयर कब बने? कृषा काफी हड़बड़ाहट में थी। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसके घर वाले उसे युग के इस तरह गले लगाकर देखते हुए खुश नहीं थे। भले ही कृषा की नजरें अपनी फैमिली पर ना गई हों, लेकिन युग की चली गई थी। वो कृषा को सहलाते हुए जानबूझकर तेज आवाज में बोला, कोई बात नहीं बेबी, आने में थोड़ा टाइम लग गया, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। कृषा को युग के गले लगे देखकर रोहन ने गुस्से में मुठियां बांध ली। वो बाहर जाने लगा, तभी अर्जुन ने उसे रोका। बानी चतुर्वेदी वहां से चली गई थी।
हमें यहाँ से चलना चाहिए युग, बाकी की बातें घर पर करेंगे, हर्षवर्धन राणा ने तेज आवाज में कहा। तब कृषा का ध्यान टूटा और वो युग से तुरंत अलग हो गई। हाँ चलते हैं दादू, पहले ससुराल वालों से बात तो कर लूं, नहीं वो इस बात को लेकर नाराज ना हो जाएं कि उनका दामाद उन्हें ईगो दिखा रहा है, युग ने तिरछी मुस्कुराहट देते हुए कहा और फिर कृषा का हाथ पकड़कर मिस्टर सिंघानिया के पास आया। कृषा अपने दादू से गले लगना चाहती थी लेकिन युग ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसे आगे नहीं जाने दिया। युग उनके गले लगने के बहाने पास आया और फिर धीरे से कहा, एक हफ्ता काफी होगा ना ऑस्ट्रेलिया जाकर वापस आने में। युग को इतना ही कहना था इसलिए वो उनसे अलग हो गया और फिर कृषा का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। उसने जाते हुए मुड़कर मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखकर ईविल स्माइल दी। ये पहली बार था जब युग कुछ करने से पहले मिस्टर सिंघानिया को बता रहा था। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनकर मिस्टर आदित्य सिंघानिया भी समझ गए थे कि युग का अगला निशाना चौथा पड़ाव है। कई लोगों के अंदाजे बिल्कुल सही निकले। हाँ युग ही लॉयर था। अब पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।